सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे वेदायत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत्पदन्ति यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमिति।
जिसे सारे वेद बोलते हैं, ऋषि मुनि जिसको पाने के लिए तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य जिसको पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मैं अगर तुम्हें संक्षिप्त में बताऊं वो कौन है, उसका संक्षिप्त नाम ओम है। आज हम उसके अंतिम कड़ी पर हैं। ओम की में जो तीन अक्षर है अ उ म, और तीन अक्षरों का जो मिला हुआ रूप है ओम, जो कि इनविजिबल है, कभी वर्णमाला में नहीं होता। ये जो चार अक्षर हमारे सामने हैं, ये चार दुनिया के चार स्टेट्स को, स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे जीवन के भी चार अवस्थाओं को बताते हैं। हमने सुना कि आकार जैसे वर्णमाला में हर अक्षर में समाया हुआ है और वर्णमाला का पहला अक्षर है, इसी तरह परमात्मा हर चीज में समाया हुआ है और वह संसार का आदि है। आकार उस परमात्मा के उस विराट स्वरूप को इंडिकेट करता है। जैसे मेरे जीवन में जागृत अवस्था है, मैं जगा हुआ होता हूं, इसी तरह ये संसार का जो विविधता से भरा हुआ विराट रूप है, इस विराट रूप को आकार इंडिकेट करता है। हमने ऊकार से जाना, जैसे ऊकार अपने आगे और पीछे वाले वर्णों को संतुलित करता है, बैलेंस बनाता है, इसी तरह इस संसार को जो संतुलित बनाता है, बैलेंस्ड बनाता है, उस ईश्वर को हम ऊकार से इंडिकेट करते हैं। जैसे मेरे जीवन में सोना गाढ़ नींद में और जगे हुए अवस्था के बीच में एक सपने की स्थिति होती है, जब नींद गाढ़ नहीं होती है, हल्की नींद होती है, उसको सपनावस्था कहते हैं। जब मेरी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, जब मेरे सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, पर मेरा जो मन है अब भी एक्टिव है, उस अवस्था को हम स्वप्नावस्था कहते हैं। इसी तरह इस संसार का जब ये इस दिखने वाली अवस्था में नहीं होता है, मतलब ये इस मैनिफेस्टेबल रूप में नहीं होता, ना ये प्रलय के रूप में विनाश की स्थिति में होता है, वो एग्जिस्ट करता है पर उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। जैसे अंडे में पक्षी है, जैसे बीज में पेड़ है, जैसे माँ के गर्भ के पहले दिन में या पहले हफ्ते में बच्चा है जो होता है पर जिसको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है, ये क्या है, सृष्टि और प्रलय के बीच की स्थिति है, ये संसार की स्वप्नावस्था जिसको हमने हिरण्य गर्भ से जाना उकार से। हमने ये भी जाना मकार से, जो ओमकार का तीसरा अक्षर है, मकार जैसे वर्णमाला का अंतिम अक्षर है, इसी तरह ईश्वर भी इस समस्त संसार का अंतिम है। जैसे मेरे जीवन में एक तीसरी, एक थर्ड स्टेज आता है, जब मैं गाढ़ नींद में होता हूं, मेरा कोई सेंस या कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती है, मेरा मेंटल एक्टिविटीज, मेरे मन भी काम नहीं करता, पूरी तरह मैं शांत होता हूं, मुझे दुनिया का कोई भी खबर नहीं होता, बाहर शादी के ड्रम बज रहे हैं या आग लगा हुआ है, मुझे पता नहीं चलता, इतनी गाढ़ नींद में हूं। वो गाढ़ नींद मौत नहीं है, पर मौत और गाढ़ नींद में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। मौत से हम वापस नहीं आते, गाढ़ नींद से हम उठ करके फिर वापस आते हैं, पर समानता यह है कि मौत में या गाढ़ नींद में हमें कोई ज्ञान नहीं होता है। इसी तरह इस संसार की भी गाढ़ नींद होती है। गाढ़ नींद का मतलब प्रलय होना, सब कुछ नष्ट होना। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी, हिंदू दर्शन में किसी भी चीज का विनाश नहीं होता, सिर्फ वो अपने जो ग्रॉस फॉर्म है, जो अपना स्थूल रूप है, उसको छोड़ के जब वो अपने शटल फॉर्म में, जब वो अपने अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उसी को हम प्रलय कहते हैं। ये जो पृथ्वी, ये जो आकाश, ये जो सूरज, ये जो चांद, ये जो पहाड़ पर्वत हम देखते हैं, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा, रहेगा नहीं। रहेगा नहीं का मतलब नहीं है कि इनकी एग्जिस्टेंस की सत्ता नहीं रहेगी, ये अपने अणु रूप में रहेंगे, उसी अवस्था का नाम प्रलय है। ईश्वर उस संसार की प्रलय अवस्था का प्रतीक है और मेरे जीवन में मेरी आत्मा मेरी सुषुप्ति अवस्था का भी धारक है। मकार इन दोनों अवस्थाओं को बताता है। आज हम अंतिम कड़ी में, क्योंकि ये तीन चार कड़ियों से हम चर्चा कर रहे हैं और काफी लोगों को इससे बड़ी परेशानी भी होती है, और जैसे ही ओम की चर्चा शुरू होती है काफी लोग उठने लग जाते हैं। मैं इसीलिए इसको जल्दी जल्दी कंक्लूड करने का सोच लिया, क्योंकि काफी लोग देखा कि थोड़ा बोर हो रहे हैं, थोड़ा हैवी हो रहा है। तो आपकी और हमारी दोनों बात के मैंने बीच का रास्ता निकाला कि आपको जल्दी से जल्दी इससे आगे बढ़े, छुटकारा दिला देंगे आज, फिर आगे से नए विषय देंगे। कुछ लोगों को गंभीर विषय सुनने की थोड़ी आदि नहीं होता है, होते हैं, वो कहते हैं थोड़ा हल्के फुल्की बातें करो, कहानियां सुनाओ, घर गृहस्थी की बातें बताओ, मियां बीवी की झगड़ों के बारे में कुछ बताओ, बच्चे पालने की बात बताओ, तो थोड़ा एंटरटेनिंग होता है, वो अच्छा भी है, पर रोज रोज कभी कभी थोड़ा हलवा पूड़ी, थोड़ा हैवी खाना भी खा लेना चाहिए। जैसे आप पिज्जा खाते हैं, उसमें बहुत वो होता है चीज वगैरह, पर हैवी होता है, पर आप रोज थोड़े ही खाते हैं, तो हम आपको रोज पिज्जा भी नहीं खिलाएंगे। कभी कभी ओम की व्याख्या करते हैं जो थोड़ा हैवी होता है, बाकी तो आपको चावल दाल सब्जी से ही काम चलाएंगे। तो जरा अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आएगा, जो दृश्य आएगा, आ गया। ये ओम की चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था जो इनडिस्क्राइबल है, जिसको बताया नहीं जा सकता, इनविजिबल है, जिसको देखा नहीं जा सकता, अनथिंकेबल, जिसको आप सोच नहीं सकते। इसकी चर्चा करने से पहले थोड़ी सी हम अपनी अवस्था के बारे में देखते हैं। मेरे शरीर में तीन अवस्थाओं के बारे में आपने सुना, या तो मैं जगा हुआ होता हूं, या मैं सपने की स्थिति में होता हूं, या मैं पूरी गाढ़ नींद में होता हूं। ये मेरी तीन अवस्था है। इसके अलावा चौथी अवस्था मेरे जानकारी में मेरे साथ कुछ नहीं होता, या तो मैं गाढ़ नींद में, या तो सपने में, या तो मैं जगा हुआ होता हूं। एक चौथी अवस्था मेरी होती है जो मुझे कभी पता नहीं चलता, वो चौथी अवस्था है जहां ना मैं जागता हूं, ना मैं सोता हूं, ना मैं सपने देखता हूं, जहां ना मेरा ये शरीर होता है, जहां ये ना मेरा मन होता है, जहां मेरी ना ये बुद्धि होती है। मैं बुद्धि से परे, मन से परे, शरीर से परे, इसीलिए मैं गाढ़ नींद से भी परे, हल्की नींद से भी परे, जगी हुई अवस्था से भी परे, जिसे हमारे जो शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने इसको मुक्त अवस्था कहा, निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, मोक्ष अवस्था। वो कौन सी अवस्था है? वो ऐसी अवस्था जब दोबारा मुझे पैदा होना नहीं पड़ता। पैदा होने का मतलब क्या है? शरीर धारण करना। मरने का मतलब क्या है? पुराने शरीर को छोड़ना। पैदा होने का मतलब एक नए शरीर को जाना। मतलब मैं, मेरी जो आत्मा, ये हमेशा किसी ना किसी शरीर में रहता है, या तो बुढ़े शरीर में, या फिर बचपन बच्चे वाले शरीर में, और अगर उसको शरीर से मौत टूट जाता है, वो नए शरीर लेता है। जब तक मैं शरीर में हूं, मेरी ये तीन दशाएं होंगे, मैं या तो जगी हुई स्थिति में हूंगा, या सपने की, या सोए हुई स्थिति में। पर जब मैं अपनी साधनाओं से ऐसी स्थिति में पहुंच जाता हूं जब मुझे फिर जन्म नहीं मिलता, जन्म नहीं मिलता मतलब शरीर नहीं मिलता, ना तब मैं इस रूप में होता हूं, ना मैं इंसान, ना कुत्ता, ना बिल्ली, ना पेड़ पौधा, ना चींटी, ना खरगोश, कुछ नहीं, तो भूत प्रेत नहीं है। उस अवस्था का नाम मुक्त अवस्था है। वो मेरी चौथी अवस्था है, पर मेरी समस्या है कि मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अभी भी सभा में बैठे हुए आधे से ज्यादा लोगों के मन में ये नेगेटिव विचार आता होगा, ये बकवास है, मरने के बाद क्या आत्मा होती है नहीं होती है, किसने देखा क्या किया, ये बकवास क्यों लगता है, ये कोई आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेबल विचार नहीं है, ये करोड़ों सालों से जब से सृष्टि पैदा हुई, जब शास्त्र, तब से ये विचार है और ये स्वाभाविक है। क्यों? जिनको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जान नहीं सकते, उस पर डाउट होना स्वाभाविक है। मरने के बाद मेरी क्या स्थिति है मैं कभी नहीं जान सकता इस फिजिकल बॉडी के साथ, इसलिए मुझे हमेशा डाउट होता है। ऐसा नहीं कि आपको डाउट है, आप में से कुछ लोगों को शंका है, जो बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़े हैं, जो शास्त्र पढ़ के आपको सुनाते हैं, उनको भी शंका है, तभी तो मौत से डरते हैं। मैं आपको सुनाता हूं इतनी आत्मा की बातें, आप यहां सांप छोड़ दो मैं भी उठ के भाग जाऊंगा, मतलब मुझे भी मौत से डर है, पर मैं आपको सुनाता हूं मौत कुछ भी नहीं है, मौत के बाद आत्मा अजर बचती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक हम उसको रियलाइज नहीं करते, जब तक वो हमारे सामने नहीं होता, हम भरोसे नहीं कर पाते, हम मान लेते हैं, पर हमारा दिल किसी कोने में उसको मान नहीं पाता। अरे हमेशा से रहा ये जो साइंस के, मॉडर्न साइंस के जो नए नए इनोवेशंस होते हैं, जो टेक्नोलॉजी में नई नई चीजें आती हैं, जब भी पहली चीज पहली बार दुनिया में आता है या उसके बारे में अखबारों में छपता है, लोगों को हमेशा शक होता है, पता नहीं आपके समय तक जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पता होगा, जब वो छोटे होंगे उस समय टीवी नहीं था, अगर था तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, जब शुरू शुरू में टीवी आया और जिन देशों में टीवी नहीं पहुंचा उन देशों में अखबार में बात पहुंची कि घर में बैठ के आप इंग्लैंड में क्या होता है देख सकते हो, दिल्ली में क्या होता है देख सकते हो, लोगों ने कहा बकवास है, ये तो पुराण की कहानियों की तरह है। फिर जब सचमुच घर में टीवी आया, पड़ोस के घर में टीवी आया, दौड़ के देखने लगे, भारत में तो ऐसा हुआ जो नए नए टीवी आने लगे, एशियाड गेम के समय भारत में पहली बार हुआ जब 68 में 84 में, तो तब टीवी का ज्यादा प्रचार हुआ, तो जिसके घर में टीवी आया पहले उसके हर घर में हवन हुआ, आरती हुआ, ऐसे एक अजीबो गरीब यंत्र है जिसको घर में बैठ के आप दुनिया भर की चीजें देख सकते हो, यकीन नहीं हुआ। फिर फोन आया, घर में जब फोन लगा, तार वाला फोन, ये वाला फोन नहीं, तो भी लोगों को यकीन नहीं होता था, अच्छा ये अमेरिका में, यूरोप में, किसी देश में ऐसा मशीन निकला है कि अपने घर में बैठ के आप अपने चाचा के साथ बात कर सकते हो, चाचा के साथ मतलब 10 किलोमीटर दूरी पर, इतने में भी यकीन नहीं होता था, अब तो बिना तार के पॉकेट में रख के कहीं भी बाथरूम में बैठ के ग्रोसरी में खड़े होकर भी बात कर लेते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमेशा जब भी नया विचार, नई चीजें आती है, जब तक हम उसको अपने आंखों से व दूसरे माध्यम से एक्सपीरियंस नहीं कर देते, हमें डाउट होता है। जब भी कोई पहली बार साइंटिस्ट कोई नई चीजें, नया थ्योरी लाता है, तो दूसरे साइंटिस्ट ही सवाल उठाते हैं, इन आम इंसान तो वैसे ही सवाल उठाता है, वो दूसरे साइंटिस्ट भी सवाल उठाते हैं, जब भी दुनिया में कोई पॉलिटिकल, कोई सोशल, कोई साइंटिफिकल नया सोच आता है तो हर कोई उस पर खाने के लिए दौड़ पड़ता है, उसको काटने के लिए। जब तक वो पॉपुलर ना हो जाए, जब तक वो आम आदमी में ना पहुंच जाए, आत्मा की भी वही दशा है। मरने के बाद आत्मा होती है। जिन लोगों ने अनुभव किया अपनी साधनाओं से, उन्होंने शास्त्रों के द्वारा हमारे तक बताया। कुछ लोगों ने, कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते, जब तक खुद रियलाइज नहीं करते। पर ये जो विश्वास नहीं होने का कारण क्या है, क्योंकि वो अदृश्य है, उसे हम देख नहीं सकते, उसको हम सुन नहीं सकते। क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, इसलिए हम उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, उसको बता भी नहीं सकते। आत्मा नीला है, पीला है, सफेद है, चौकोना है, सीधा है, लंबा है, टेढ़ा है, गोल है, अणु है, परमाणु है, बड़ा है, कुछ नहीं डिस्क्राइब कर सकते। उसके बावजूद भी आपको मानना पड़ेगा, क्यों हम आगे आएंगे। जैसे मेरे जीवन में एक दशा ऐसी होती है जिसको मैं जान नहीं पाता हूं, जिसको मैं बता नहीं पाता हूं, पर वो मेरी एक दशा है, वो मुक्त आत्मा दशा, जिसमें ना मैं सोता हूं, ना मैं जागता हूं, ना मैं सपने देखता हूं। वो मेरी चौथी अवस्था है, जो ओमकार की चौथा ओमकार जिसको इंडिकेट करता है। इसी तरह इस संसार का भी एक चौथी अवस्था है। जब ये संसार का जो विराट रूप नहीं होता है, जहां सृष्टि नहीं होती है, जहां प्रलय भी नहीं होता, जहां हिरण्यगर्भ मतलब सृष्टि के पहले की स्थिति भी नहीं होती है, जहां कुछ भी नहीं होता पर भी वो है, उसके आगे वाले स्लाइड दिखा। ये यूनिवर्स का, संसार का एक चित्र है। आमतौर पर जो हम धार्मिक लोग हैं, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जब हम बात बात पर बोल देते हैं ईश्वर इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड को कभी हिसाब करके दिखाएं, बोलने में तो ऐसा लगता है एक वर्ड है। आप अपने घर में, अपनी कॉलोनी में, अपने शहर में रहते हैं, आपको अपने शहर से दूसरे देश को, दूसरे शहर में जाने के लिए दिनों लग जाता है। और ये धरती एक प्लैनेट है, एक ग्रह है, वो किसी एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम एक सन के आसपास घूमता है। दुनिया में, आकाश में कितने सूरज हैं, कितने तारे हैं, रेगिस्तान में जितने रेत हैं, समुद्र के पानी के जितने बूंद हैं, उससे भी ज्यादा। ये जो महाकाश है, ये पृथ्वी को, अगर वो महाकाश में कहीं आप डॉट भी लगाएंगे तो भी पृथ्वी छोटी होगी। अगर आप कागज में एक डॉट लगा दें और उसको भी करोड़ों टुकड़ा करें, जितना हिस्सा बनेगा इस महाकाश में, पृथ्वी उससे भी छोटी है। इस महाकाश में एक आकाश गंगा होती है, अगली स्लाइड दिखाएंगे, जिसको आप गैलेक्सी कहते हो, तारों का एक झुंड है। उस तारों के झुंड में कुछ सोलर सिस्टम होते हैं, अगला जो हमारा अपना सिस्टम है सूरज के। दुनिया में कितने गैलेक्सी है महाकाश में, आप उनको गिन नहीं सकते हो, रेगिस्तान के रेतों की तरह। गैलेक्सी में करोड़ों करोड़ों तारे एक एक आकाश गंगा में होती है। आकाश गंगा मतलब जिसको गैलेक्सी कहते हैं। हमारी जो आकाश गंगा जिसमें सूर्य है, उसको हम मंदाकिनी कहते हैं। उस सोलर सिस्टम में एक पृथ्वी है, अगली स्लाइड में। पृथ्वी में आप किसी कोने में हो, अब अंदाज लगाओ संसार में आपका स्थान कहां है। पर सज्जनों माताओं, जिस संसार की बात मैंने की, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड की, वेद कहता है वो ईश्वर का सिर्फ एक चौथाई है, तीन चौथाई छुपा हुआ है, अदृश्य है, अव्यक्त है, जिसमें कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, जिसमें कोई सृष्टि नहीं होती है, जिसमें कोई प्रलय नहीं होता, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं है पर वह एग्जिस्ट करता है। अगला स्लाइड, जिसको नए फिजिक्स में, इसको थोड़ा क्लिक करेंगे तो आएगा। आज की जो विज्ञान मानता है कि ये जो पूरा जो संसार है, संसार मतलब महाकाश जिसको आपने देखा यूनिवर्स के रूप में, जो मैनिफेस्ट के रूप में है वो सिर्फ 24-25% है दुनिया का, मतलब 1/4। उसका 75% जिसको आजकल आप नई भाषा में डार्क एनर्जी कहते हो, आप डार्क एनर्जी जल्दी समझ जाते हो, और अगर हम कहें कि ये ईश्वर का तीसरा है तो आप मजाक उड़ाते हो, तो इसलिए नक्शा बतानी पड़ती है आपको। फिर आप कहोगे पंडित जी तो ऐसे ही उठपटांग बोल के भाग जाते हैं, फिर ये आप मानते हो। तो आज ये नया विज्ञान साबित करता है कि ये जो विशाल महाकाश जिसमें इतने तारे सूरज हैं, जिनको रेगिस्तान के रेतों से भी ज्यादा हैं, और जिसमें सूरज एक रेत से भी छोटा है, पृथ्वी तो किसी अणु परमाणु से भी छोटा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चौथाई है, 1/4 है। वो 1/4 जो यूनिवर्स है उसमें भी जो जो जगत के रूप में वो सिर्फ 0.4% है, उसमें भी बहुत सारे डार्क मैटर के रूप में अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, उस रूप में चल है। इसी को ठीक एक्यूरेट, इसी को संस्कृत में ऋग्वेद में पुरुष सूक्त क्या कहता है, ये उसका ट्रांसलेशन है जो आप नीचे पढ़ सकते हैं। मैं उसका मंत्र यहां पढ़ता हूं, आप उसको यहां ट्रांसलेशन देखें। एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि। ये जो कॉस्मिक बींग है जिसको वेद में पुरुष कहा, इज मच ग्रेटर देन ऑल हिज ग्रेटनेस इन व्हाट ऑल वी सी, and all that we see in this universe is but his quarter, sirf ek chauthai। aaj se 10,000 20,000 saal pehle likhe hamare ved ke rishiyon ka ye gyan hai, ye jo duniya hai jo manifestation ke roop mein, wo us paramatma ki ek chauthai hai, and the rest 3/4 which is beyond destruction is safely in the worlds beyond। जिसको आज आप डार्क एनर्जी कहते हो, तो साइंटिस्ट जब नई नई चीजें निकालते हैं ना, तो पंडित जी को आसान होता है आपके गले में उतारने के लिए, नहीं तो तब तक तो पंडित जी को बड़ा पोंगापंथी और उल्लू समझा जाता है, उठपटांग बोलने वाला समझा जाता है। साइंटिस्ट बहुत मदद करते हैं धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, खास करके हिंदू धर्म को। दुनिया के बाकी सारे धर्म डरते हैं साइंस से, नया नया इनोवेशन हुआ नहीं कि उनका धर्म खतरे में पड़ता है, और हमें बड़ा गर्व होता है कि देखो ये भी हमारा आप साबित हुआ। हमारी प्रॉब्लम है कि हिंदू लोग अपने शास्त्रों को पढ़ते ही नहीं है। इसी का अगला, जरा अगला स्लाइड चलाएंगे। ये पुरुष सूक्त ऋग्वेद का पूरा, कभी मौका मिले पुरुष सूक्त पूरा पढ़िए। 10वें मंडल का 90 सूक्त है, उसमें 16 मंत्र है। त्रिपादोर्ध्वौ दैत पुरुष पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् साशनेन शने अभि। एवं दिस वर्ल्ड इज 3/4 ऑफ पुरुष एबव दिस वो इस यूनिवर्स के ऊपर उसका तीन क्वार्टर है, बट द क्वार्टर व्हिच इज इन दिस वर्ल्ड अपीयर्स अगेन एंड अगेन एंड फ्रॉम दैट इज बर्न द बीइंग्स दैट टेक फूड एंड दोज इनएनिमेट वंस दैट डोंट टेक फूड एंड ऑल दिस अपीयर्ड फॉर एवरी वन ऑफ अस टू सी. वो जीव हो निर्जीव हो जड़ हो चेतन हो वो उसकी एक चौथाई है, वो तीन चौथाई अव्यक्त है. ओमकार में जो तीसरा चरण है, जो तुरीय अवस्था है, जो चौथी दशा है, वो अव्यक्त है. जैसे आपको आत्मा के दिखता नहीं है पर आपकी आत्मा के अस्तित्व को मानना पड़ेगा, जैसे जो डार्क एनर्जी है उसमें कोई मैनिफेस्टेशन नहीं, कोई स्वरूप नहीं, पर आपको मानना पड़ता है. इसी तरह मेरे जीवन के इस शरीर के बियॉन्ड भी कुछ है ये मानना पड़ेगा, इस संसार के बाहर भी बहुत कुछ है, और मेरे जैसे इस छोटी सी आत्मा के शरीर के बाहर भी एक हिस्सा है. इसी तरह इस विशाल परमात्मा का, इस परम विश्व विशाल ब्रह्मांड जो है वो उसका सिर्फ एक पाद है, उससे बाहर भी उस ईश्वर की सत्ता है, ये उसका चौथा चरण है. इसी के साथ में इस बात को एक छोटा सा छोटी सी कविता गा करके इसको यहीं समाप्त करता हूं. ओम हे जीवन हमारा, ओम प्राण धार है, ओम हे कर्ता विधाता, ओम पालन हार है, ओम हे दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम हे बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में ये ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा. इसीलिए जरूर जीवन में ओम का उच्चारण करिए, जप करिए. आपने सुना ओम का, चार दिनों से चार हफ्तों से आपको ओम की व्याख्या कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें संक्षेप में समाप्त करना पड़ा क्योंकि कुछ लोग बोर हो जाते हैं. इसी से आप अंदाज लगाएंगे इस ओम शब्द की कितनी महिमा है, क्यों ऋषियों ने मुनियों ने ईश्वर के लिए ये ओम शब्द चुना, और आज हम ईश्वर के नाम पर नाम के लागे कितने उठपटांग शब्द जोड़ जोड़ के बोलते हैं. ऋषियों ने हमें एक नाम दिया पर क्योंकि हम उसको समझते नहीं है, हमारे पड़ोस के किसी गुरु ने, दो टके के गुरु ने जो 100 रुपए दक्षिणा लेकर के मंत्र दे देता है, उसके मंत्र को तो हम दुनिया के सबसे बड़ा मंत्र मानते हैं, और शास्त्रों में विचारों से भरा हुआ इस ओम को हम धीरे धीरे दुकारते जाते हैं. जीवन में अपने हर कार्य में ओम को अपनाएं, ओम के अर्थों का चिंतन करें, मनन करें और ओम जप जरूर करें. ओम.